भारत फिर भरपूर बनेगा। फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी।
ओम शांति। एक बहुत बहुत पुराने नगर में, उतना ही पुराना एक चर्च था। वो चर्च अब इतना पुराना और इतना जर्जर हो गया था कि लोगों ने उसमें आना बंद कर दिया था। उसकी अवस्था बहुत खराब हो चुकी थी और जब उपासकों ने आना बंद कर दिया तो जो चर्च के सदस्य थे और चलाने वाले थे, उन्होंने सोचा क्या किया जाए। कई बार चर्च की मरम्मत कर चुके थे, रंग रोगन किया, कभी कोई मरम्मत की तो कभी कोई मरम्मत, पर चर्च की ऐसी अवस्था थी कि अब गिरा या तब गिरा। तो जब ऐसी हालत हो गई उस चर्च की, तो एक मीटिंग बनाई गई, एक कमिटी और एक मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग भी चर्च के बाहर हुई, क्योंकि चर्च कभी भी गिर सकता था। और वो जो मीटिंग हुई उसमें चार प्रस्ताव पारित हुए। उस चर्च से सबका बहुत लगाव था, मुख्यतः जो संस्थापक थे, चलाने वाले थे। तो उन्होंने चार प्रस्ताव पारित किए। पहला प्रस्ताव कि जो पुराना चर्च है अब उसे गिरा देना चाहिए, क्योंकि वो अब ऐसी हालत में नहीं है कि उसे फिर से ठीक किया जाए। तो बेहतर यही होगा कि उसे गिरा दो। और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। दूसरा प्रस्ताव था कि एक नए चर्च का निर्माण किया जाए, उसी चर्च के ऊपर, उसी जगह पर, क्योंकि जब तक नया नहीं बनेगा लोग आएंगे नहीं। लोग तो आने से भी डरते हैं, क्योंकि कभी भी गिर सकता है। ये प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। तीसरा प्रस्ताव रखा गया, परंतु हमें पुराने से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, तो जो नया चर्च बनेगा वो पुराने के ऊपर ही बनेगा। जो पुराना है उसी की ईंटों से बनाया जाएगा, वो जो पुरानी जमीन है वहीं पर बनाया जाएगा, वो जो उसकी सामग्री है उसी सामग्री का प्रयोग करके बनाया जाएगा। और ये प्रस्ताव भी पारित हुआ। एक अंतिम और चौथा प्रस्ताव रखा गया और वो ये था, और शायद सबको हंसी भी आ जाए, कि उन्होंने कहा जब तक नया नहीं बनेगा हम पुराना नहीं तोड़ेंगे। जब तक नया चर्च नहीं बनेगा हम पुराना नहीं तोड़ेंगे। वो चर्च आज भी खड़ा है और वैसा ही खड़ा है, और आज भी लोग वहां आने से डरते हैं। ये कहानी मनुष्य जाति के इतिहास की है। जो कुछ जर्जर हो चुका, जो कुछ पुराना है, जो कुछ जरा जीर्ण हो चुका, जो कुछ अव्यर्थ हो चुका, अब जिसका कोई मूल्य नहीं, उसी को पकड़े रहता है मनुष्य, उसी से लगाव रहता है और वो जो नया होना चाहिए, वो जो आने वाला है, वो जो नव है, उससे स्वतः ही दूर रहता है। और ये कहानी केवल किसी चर्च या किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी धार्मिक स्थान की नहीं है, ये कहानी है मान्यताओं की, रूढ़िवादिताओं की, ये कहानी है पुरानी धारणाओं की, ये कहानी है पुराने जीवन प्रवाह की, जीवन शैली की, भावनाओं की, बिलीफ सिस्टम की, फेथ की। क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने से ये जो आसक्ति लगाव कम हो जाए और एक नए युग की ओर, नए धर्म की ओर, नई जीवन शैली की ओर, नई दिशा की ओर, नई दशा की ओर हम चल पड़े। तो वर्तमान समय जो युग चल रहा है, कलिकाल, अपनी चरम सीमा पर है। जहां देखो वहां पर अत्याचार है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है, विकारों की वायु चहुओर बह रही है, हवाओं में वासनाएं तैर रही है, हर मन में जहां देखो वहां निर्बलता है, कमजोरी है, दुख है, दर्द है, पुकार है। क्या ऐसे दुखमय संसार में रहते हुए हम अपने आप को बदल सकते हैं? क्या ऐसे संसार में रहते हुए हमें कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि जो हमारे जीवन को नवी दिशा दे दे? एक ऐसा ज्ञान जो प्रकाश की तरह हृदय में आ जाए और अंतस के सारे अंधकार को दूर कर दे। फिर ना दुख रहेगा, ना उदासी, ना दर्द, ना विकार, ना वासना। अंतकरण जहां शुद्ध हो जाए, वो सारा व्यर्थ, वो सारा नकार, वो सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाए। पिछले कुछ दिन से आप सुन रहे हैं ढेर सारी ज्ञान की बातें, सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सार क्या, असार क्या, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, ये ढेर सारे प्रश्न हैं। तो आज हम इस सत्र में चर्चा करेंगे उस ज्ञान की जो हमारे हृदय में ऐसा छा जाए, समा जाए, धारण हो जाए नस नस में कि जीवन का सारा अंधकार ही दूर हो जाए। और उसी ज्ञान को गीता ज्ञान कहा हुआ है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षम वगमम धम्य सुसुखम कर्तव्ययम। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे सुना रहा हूं सुन, वो राज विद्या है, राजगुह्यम गुह्यतम ज्ञान है। ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने किसी को दिया नहीं, वो ज्ञान मैं तुझे सुना रहा हूं सुन। पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला है वो ज्ञान। तो क्या ऐसा भी कोई ज्ञान है जो यदि हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन के जो कलंक है, कलमश है, दुख है और दर्द है वो मिट जाए। यदि किसी एक कमरे में 1000 साल से अंधकार है तो उसे कैसे निकालेंगे? किसी एक कमरे में 1000 साल से अंधकार है, क्या तलवार से उस अंधकार को भगा सकते हैं? क्या कोई सेना लेकर आए और उस अंधकार को धक्का देकर बाहर निकाले? क्या किया जाए? दिया। दिया जलाना होगा और जिस स्थान पर आप बैठे हैं यह दीप स्तंभ है, जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं है। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। ये वो भूमि है जहां पर स्वयं भगवान के पैर पड़े हैं, भगवान का जहां अवतरण हुआ है, वो ही भगवान जिसकी चर्चा सदियों से हम कर रहे हैं परंतु उसके विषय में कोई कुछ नहीं जानता। वो जो गॉड है, वो जो ईश्वर है, वो जो अल्लाह है, उसके चरण कमल इस भूमि पर पड़े हैं। आप सब ने यह अनुभव किया होगा कि जब से यहां पर आए हैं इस वायुमंडल में, इस वातावरण में कुछ ऐसे प्रकंपन है, कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसी ऊर्जा है कि यहां आते ही जो तनाव था, जो स्ट्रेस था, जो टेंशन था, जैसे किसी ने एब्जॉर्ब सक कर लिया, खींच लिया, छीन लिया। कितनों को ऐसा अनुभव हुआ कि यहां आए और हमने किसी से कुछ कहा नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं, अभी किसी ने कुछ बोला नहीं, परंतु इस स्थान पर आते ही यहां के जो प्रकंपन थे, यहां के जो वाइब्रेशंस थे, यहां पे जो ऊर्जा थी, सकारात्मक ऊर्जा, इस सकारात्मक ऊर्जा के समंदर में आते ही सारी थकान मिट गई। ये कौन लोग हैं जो यहां पर घूम रहे हैं? ये कैसी व्यवस्था है यहां पर? यहां पर देखा होगा कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है, कोई कोई बॉस नहीं दिखता, कोई इंचार्ज नहीं दिखता, और हर एक एक ही ज्ञान सुना रहा है और एक बात आप हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपने जो कुछ यहां सुना इन सबसे भी शक्तिशाली एक व्याख्यान और भी है और वो है अनुभव। यहां पूरे परिसर में जितने सेवाधारी आत्माएं भाई बहने काम कर रहे हैं, किसी भी एक के पास चले जाओ जो झाड़ू लगा रहा है, जो बर्तन मांज रहा है, जिसे शायद ये भी पता नहीं यहां कोई प्रोग्राम भी चालू है, ऐसे किसी एक भाई के पास, एक बहन के पास, और उससे ये पूछो कि तुम यहां कैसे आए, इस ज्ञान को तुमने क्यों धारण किया। वो जो उत्तर देगा शायद वो वक्ता नहीं है, शायद उसे बोलना नहीं आता, शायद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, परंतु वो जो उत्तर देगा उसका वो उत्तर सर्वश्रेष्ठ व्याख्यान होगा और भाषण होगा, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो कोई रटा रटाया नहीं बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो उसका आंतरिक अनुभव है। उसको किसी व्यक्ति ने यहां नहीं लाया, उसको किसी ज्ञान ने भी नहीं लाया यहां पर, उसको एक प्रेम ने लाया, एक ऐसे खिंचाव ने लाया कि जो खिंचता हुआ सारे संसार के वैभव को छोड़कर यहां आ गया, इस छोटे से गांव में संसार की सारी चकाचौंध छोड़कर, वो था उसका अपना अनुभव, और ये जो अनुभव है सर्वश्रेष्ठ है। जो दिल को चीर दे, ज्ञान का स्तंभ है ये स्थान, तपस्वियों की तपस्या भूमि है ये स्थान, प्रभु प्रेम की तरंगे यहां पर तरंगित है, केवल अनुभव करना है, कुछ समय अपने मन को पूरा मौन करके संपूर्ण स्थिरता से यहां पर वायुमंडल में जो अव्यक्त प्रवाह बह रहा है उसका अनुभव। तो एक तरफ तो आज संसार है अनित्यम असुखम लोकम, गीता में लिखा है, जहां पर अनित्यता है, सुख नहीं है, सभी ओर पापाचार, सभी ओर भ्रष्टाचार। किसी भी न्यूज़पेपर को खोलो, किसी भी टीवी चैनल को देखो, उसमें क्या दिखाई देता है? निगेटिविटी निगेटिविटी निगेटिविटी। एक निगेटिविटी का समंदर है, विकारों का समंदर संसार में। और ऐसे वायुमंडल में क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे महान है, जो आज तक हमने कभी सुना नहीं? और उसी ज्ञान का नाम गीता ज्ञान है। और उसी ज्ञान से एक नवयुग की, नवराज्य की, नवधर्म की, सतकर्म की, सतबोल की, सतभाषा की, सतभाष्य की, सतराज्य की, सतबुद्धि की, सतसंकल्प की स्थापना होगी। गीता ज्ञान। आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है? बहुत कम। भारत का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र जिसे कहा गया है, महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि जब भी मेरे मन में कोई प्रश्न होता है और जब भी मेरे मन में कोई शंका होती है और अचानक कोई परिस्थिति आ जाती है, मैं भगवद गीता खोलता हूं और उसका एक वाक्य मुझे सहारा दे देता है, सुकून दे देता है। स्वामी विवेकानंद जब भारत भ्रमण कर रहे थे सन्यासी के रूप में, विदेश जाने से पहले 1888 से लेकर 1893 तक, दो ही किताबें उनके पास थी बस, एक भगवत गीता और दूसरी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। बस इन दो ही किताबों के साथ घूमे, ऊपर भी आए थे माउंट आबू में, चार पांच मास वहां भी रहे थे, यहां से ही निमंत्रण मिला था विदेश का। विश्व में पश्चिम जगत और पूर्व जितने भी महान फिलोसोफर्स हुए सभी ने गीता का अध्ययन किया, सभी ने। इसके लिए गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जितनी टिकाए गीता पर हुई है उतनी शायद ही किसी शास्त्र पर हुई है। यथार्थ गीता, तिलक की गीता रहस्य, ज्ञानेश्वरी, शंकराचार्य का भाष्य अलग, श्रीधर स्वामी का भाष्य अलग, रामानुजाचार्य का भाष्य अलग, माधवचार्य का भाष्य अलग, एक ही गीता पर कितने कितने ढंग से, कितने कितनी बातों से उसको देखा गया, समझा गया, जाना गया, आत्मसात किया गया। गीता प्रेस की गीता अलग, ढेर सारी गीताएं हैं, टिका और टिकनिया। परंतु इतना होने के बाद भी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होने के बाद भी, मनुष्य इतिहास में क्या हुआ, सृष्टि का क्या हुआ? पतन ही हुआ। तो क्या वास्तव में ऐसी भी गीता हुई थी? क्या वास्तव में ऐसा भी महाभारत हुआ था, या ये सारा रूपक है? महाभारत को पढ़ो, जितने पांडव है उनका जन्म कैसा हुआ, अद्भुत सी कहानियां लिखी है। कौरवों का जन्म कैसा हुआ, अद्भुत सी कहानियां लिखी है। कृपाचार्य का जन्म कैसा हुआ, कृपी का जन्म कैसा हुआ, द्रुपद का जन्म कैसा हुआ, द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, आश्चर्यजनक कहानियां हैं, ढेर सारी कहानियां। और हर जगह पर यदि गहराई से देखा जाए, अध्ययन किया जाए सारे शास्त्रों का, तो पता चलेगा कि शायद ये बातें बाद में डाली गई है। इसको अंग्रेजी में कहते इंटरपोलेशन। शास्त्र एक बना आज और उसमें नई नई बातें डालते गए, डालते गए, डालते गए, और अभी हम उसको पढ़ रहे। उसमें कितनी यथार्थता है किसी को पता नहीं। एडमंड बर्क नाम का एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ, उसने मनुष्य इतिहास लिखा, पूरा इतिहास, शुरुआत से लेकर अंत तक सारा लिखता गया, 30 साल लगा दिए मनुष्य इतिहास को लिखते लिखते, सब कुछ लिखा। और एक दिन रात में जब बैठकर लिख रहा था, शोर आवाज हुई, वो घर से बाहर निकल के पीछे गया, वहां एक मर्डर हो गया था, लाश पड़ी हुई है, चाकू अंदर है, और जिसने खून किया वो अभी अभी भाग गया है, और सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। एडमंड बर्क वहां पर जाता है, पूछता है क्या हुआ, अभी अभी की घटना। और वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं आत्महत्या कर ली, कुछ लोग कह रहे हैं इसने किसी ने मार दिया, कुछ लोग मतलब अभी अभी जो घटना घटी उसके इतने सारे मत मता। वो घर आता है और उसने जो कुछ लिखा सब कुछ फाड़ देता है। वो कहता है जो घटना मेरे आंखों के सामने है, वहां पर चश्मदीद गवाह है, वहां पर ही इतनी सारी बातें हैं, तो मैं ये जो लिख रहा हूं 500 साल पहले 600 साल पहले का, उसमें कितनी यथार्थता हो सकती है। इसके लिए एक चिंतन का विषय है कि जो शास्त्र है संसार में आज, उसमें कितनी सत्यता है। दिखाया गया है द्वापर युग में महाभारत हुआ, यदि वो द्वापर युग में हुआ, और कहा गया है भगवान हर युग में आता है, और भगवान वहां पर आया, तो भगवान जब आया और तो क्या भगवान ऐसा हिंसक युद्ध कराएगा, पहली बात। और भगवान के आने के बाद, भगवान के अवतरण के बाद तुरंत कलियुग आ गया, और पांडवों को क्या प्राप्ति हुई युद्ध के बाद, दिखाया है पांडव स्वर्गारोहण, आधे गिर गए, केवल युधिष्ठिर चढ़ा उस स्वर्ग में। तो क्या भगवान जिनके साथ था वो सारे गल मरे? बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न ऑथेंटिसिटी के बारे में। एक तरफ है भक्ति भाव, एक तरफ है भावनाएं जो हम करते रहे, बस जिसको भक्त, जो भक्त है उसे ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, परंतु जो तर्क बुद्धि है वो सोचेगी क्या ये वास्तव में सत्य है, क्या ऐसा हुआ था, या केवल दंत कथाएं है। पांडवों के जन्म से लेकर तो बहुत सारी बातें हैं, एक एक बात पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है द मैन कृष्णा माइट हैव एग्जिस्टेड, शायद हुआ होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। गीता रहस्य में बहुत सारे प्रश्न है, एक किताब है महाभारत क्रिटिसिज्म, ढेर सारे प्रश्न खड़े किए हैं उसमें, क्या वास्तविक में ऐसा महाभारत हुआ था। तो ये तो इसका तो कोई अंत नहीं, इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, कि जो हमारे पास शास्त्र है उसमें सत्यता कितनी है, यह आप सब सोचना, विचार करना। भक्ति मार्ग में ढेर सारी सत्संग कहानियां हम सुनते आए, पर उसमें सत्य कितना है, क्या वास्तव में वही सत्य है। भगवान जिस ज्ञान के लिए कह रहा है गुह्यम गुह्यतम जो ज्ञान है, क्या यही ज्ञान है, शायद नहीं। तो सत्य ज्ञान कौन सा है फिर, किसे गीता कहा जाएगा, क्या ऐसा कोई महाभारत युद्ध था और जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर थे, और गीता का इतना सूक्ष्म और सत्य ज्ञान और इतना गुह्यतम ज्ञान उस कोलाहल में दिया गया था, क्या ये वही कुरुक्षेत्र है जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र है जहां पर यह युद्ध हुआ था। बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे जो मन को आंदोलित करते हैं। तो सत्य ज्ञान कौन सा है, तर्क की तुला पर इसे तोलना है। किसी एक महान फिलोसोफर ने कहा है डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज यू हैव रेड इट समवेयर, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन समवेयर, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशन, फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ। इसके लिए किसी चीज की मान नहीं लो क्योंकि कोई कह रहा है कि यह सत्य है, कोई कह रहा है कि ये मानो ये है सृष्टि चक्र इसको मान लो, इसके लिए नहीं मान लेना है। तुम आत्मा हो क्यों हम माने, ये परमात्मा है क्यों हम माने, सत्य का स्वयं सत्य की स्वयं खोज करनी है, सत्यान्वेषी बनना है। कोई कह रहा है करके नहीं, किसी जगह लिखा है करके नहीं, हम इस संस्था में आए हैं और यहां के लोग कह रहे हैं इसलिए नहीं, सत्य स्वयं ढूंढना है, सत्य की स्वयं खोज करनी है। और जब तक वो अनुभव नहीं तब तक हम तो कहेंगे स्वीकार नहीं करो। अनुभव, धर्म अर्थात अनुभूति, रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म अर्थात केवल सिद्धांत नहीं, केवल फिलॉसफीज नहीं, अनुभूति और गहरी अनुभूति हो जाए तो ही इस ज्ञान को स्वीकार करना। तो यहां पर पिछले कुछ दिनों से आपने ज्ञान जो सुना, अब उस ज्ञान पर चिंतन करना, अब उस ज्ञान पर मनन करना, उस ज्ञान का अध्ययन करना गहराई से। ये मत कह देना ये बहुत अच्छा है और सब लोग सुनना चाहिए, इतना कहकर छोड़ नहीं देना। ये भी मत कहना कि हम नहीं मानते, इसको रिजेक्ट भी नहीं कर देना। अध्ययन, स्टडीड, अनुभव करके देखो, अप्लाई करके देखो जीवन में। अगर ठीक है तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्टेड, छोड़ दो उसको, उसको स्वीकार नहीं करो। तो गीता ज्ञान कहां दिया गया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता की शुरुआत इसी श्लोक से है। मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, हे संजय बताओ मेरे और उनके पुत्र क्या कर रहे हैं? ये जो महाभारत के पात्र है सब कौन है? यदि हम गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं मैं खुद ही धृतराष्ट्र कभी हूं, तो मैं ही गांधारी हूं, मैं ही कभी दुर्योधन बन जाता हूं, मैं ही कभी शकुनी हूं, मैं ही कभी कर्ण हूं, मैं ही कभी भीम हूं, मैं ही कभी युधिष्ठिर हूं और मैं ही कभी अर्जुन हूं। हम ही शायद है, या हमारे जीवन के आसपास जो लोग हैं यही ये सारे किरदार है, और वो यहां ही हो रहा है, शायद मन में हो रहा है ये द्वंद। और वो अर्जुन कौन है जो वो ये पूछता है मैं क्या करूं, चंचलम मन ही कृष्ण, मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत चंचल है, समझ नहीं आ रहा है मैं करूं क्या। तो ये ढेर सारे प्रश्न, ढेर सारी बातें हैं। ये सोचो कि आज से वो चिंतन की प्रक्रिया चालू हो रही है, हमें सत्य को ढूंढना है और किसी भी हालत में ढूंढना है। जब तक सत्य को नहीं पाऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधतः, अभी मुझे जागना है और उस सत्य को पाना है, परम सत्य को, जहां पर इतने सारे धर्म है। एक एस्टिमेट कहता है इस समय वर्तमान में विश्व भर में 4,300 धर्म है, 4,300 रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। किस धर्म की ओर जाऊं, किसको सत्य मानूं? ये तो केवल धर्म है, संस्थाएं तो हर 100 किलोमीटर में एक आध्यात्मिक संस्था है। हर एक कहता है हम ही सत्य, इधर आ जाओ, जिस संस्था में भी जाओ वो कहते हैं हमारे पास आ जाओ। सत्य क्या है? सत्य की प्यास जब तक नहीं जगेगी वो अनुभव भी नहीं होगा। तो ये जो गीता ज्ञान है इसमें कुछ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, ये कब सुनाया गया, ये किसने सुनाया, ये कहां सुनाया गया, ये किस तरीके से सुनाया गया, किसको सुनाया गया? क्या वैसा ही है जैसा इतिहास कहता है? और गीता अगर 700 श्लोकों की है तो गीता के कुछ श्लोक पहले ही उपनिषद में कहां से आ गए? ढेर सारे प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हैं हम हजारों। गीता के श्लोक पहले ही उपनिषद में कहां से आ गए? एक भाष्य दूसरे भाष्य से यूं क्यों टकराता है? रामानुजाचार्य का भाष्य शंकर के भाष्य से क्यों टकराते हैं? एक ही वाक्य पर उसकी कितनी उपमाएं, कितने उसके अर्थ निकाले गए हैं, क्यों? शायद सत्य कहीं खो गया उसमें से। और जब ऐसा सत्य खो जाता है और जब ऐसी शास्त्रों की इमारत गिरने लगती है तब भगवान का अवतरण होता है। विप्रसंत सुरधे नुहित प्रभुधरि विविध शरीरा, भगवान संसार के कल्याणार्थ परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम, सत धर्म की स्थापना के लिए संभवानी मैं आता हूं स्वयं। तो ये वो समय चल रहा है जब भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुका है। कैसे अवतरित हुआ है, क्यों अवतरित हुआ है, किस लिए अवतरित हुआ है, कहां अवतरित हुआ है, कैसे हम मान ले कि यही भगवान है, किसी ने कुछ कह दिया और इन्होंने हम मान लिया, क्यों हम माने, ये सारे प्रश्न हैं और इनके उत्तर बहुत सारे आपने एक दो दिन में सुने भी, परंतु उसे गहराई से समझना है। तो जो सत्य गीता ज्ञान है, जो भगवान अब सुना रहा है और जो कहता है इस अथॉरिटी से कि ये मैं सुनाता हूं तुमको, और ये है वो रथ जिसको मैंने चुना है, जिनकी आज जीवन कहानी भी आपने सुनी, तो ये ज्ञान यदि सत्य ज्ञान है तो ये कुछ बातें हमारे जीवन में कर देगा। तो आज के सत्र में हम ऐसी 26 बातें देखेंगे गीता ज्ञान के विषय में, और उसमें से एक एक बात हमारे जीवन को बदल देगी। यदि ये ज्ञान सत्य है तो क्या वास्तव में यही ज्ञान है, क्या इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं, क्या यही है गीता। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे गीता का अर्थ एक ही शब्द में है, इसको दोहराते जाओ, मन ही मन अभी आप दोहराओ, गीता 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 गीता, त्यागी त्यागी त्याग त्याग त्याग, गीता एक अर्थ में है त्याग, ये गीता की एक परिभाषा है। उल्टा कर दो, गीता त्याग, ये उसकी परिभाषा बताई है। परंतु ये यदि सत्य ज्ञान है तो ये ज्ञान हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। आपने इतने सारे लोग यहां पर देखे, कितने प्रश्न मन में आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो ये आश्चर्य कि क्यों नहीं आ रहे आपके मन में ये प्रश्न, ये सब कुछ कैसे चल रहा है, कौन इसको चला रहा है, क्या ये मनुष्य की शक्ति है जो इस सब चीजों को चला रही है, खाना कैसे बन रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है। हमें याद है यहां पर ऊपर संत सम्मेलन में बहुत सारे महामंडलेश्वर आए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे आश्रम में यदि 500 लोग आए हैं और यदि 100 एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो हलचल मच जाती है। यहां कोई हलचल देखी, अपने आप बन रहा है सब कुछ, 100 क्या, 200 क्या, 500 क्या, 5000 भी एक्स्ट्रा आ जाए तो अपने आप सब कुछ हो रहा है। ये जो स्थान है जहां पर आप आए हैं ये कोई मनुष्य नहीं चला रहा है, द फोर्स डिवाइन, ईश्वरीय शक्ति इस कार्य को चला रही है। ये संभव ही नहीं है कि कोई मनुष्य इतने बड़े कार्य को चलाए। आपने इन बहनों को देखा जो आपको लाई है, कौन है ये, यहां के भाइयों को देखा, कौन है ये नवयुवक, कैसी ऊर्जा उनमें है, कैसी पवित्रता उनमें है, कैसा त्याग उनमें है। क्या ये साधारण लोग हैं, क्या कहेंगे, या इनमें कुछ है, कोई स्पार्क, कोई डिविनिटी, कोई दिव्यता, कुछ तो है। हमें याद है विवेकानंद ने की हुई एक भविष्यवाणी, उन्होंने कहा था यह संस्था की स्थापना हुई 1936-37, उन्होंने शरीर त्याग किया था 1902, उसके पहले की हुई, उन्होंने कहा था एक अ डे विल कम, एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी, जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। और वो जो नारिया है और वो जो महिला है और वो जो आत्माएं हैं, वो ये ब्रह्मा कुमारी बहने हैं जिनके जीवन में त्याग है और तपस्या है और जिन्होंने अपना यौवन इस यज्ञ की वेदी पर स्वाहा कर दिया। तो सत्य गीता ज्ञान क्या है? शायद वो नहीं जो शास्त्रों में है। गीता में ही एक जगह एक श्लोक है, यदि सत्य ज्ञान चाहते हैं तो क्या करो, तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंति ते ज्ञाने न ज्ञानिनाम तत्वदर्शनाम। हे अर्जुन सुन, यदि तू सत्य ज्ञान चाहता है, तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, प्रश्न पूछ, पर इस भाव से नहीं कि तुम गुरु को टेस्ट करना चाहते हो, परखना चाहते हो, इस भाव से नहीं, नम्रता से उसके पास जा और प्रश्न पूछ, परिप्रश्ने न सेवया, उसकी सेवा कर जिसको तू ज्ञानी समझता है। उपदेशंति ते ज्ञाने न, फिर तो वो तुझे उपदेश करेगा, ऐसा तत्व ज्ञान ज्ञानिनाम तत्व दर्शनाम। वो जो परम ज्ञान है, वो जो श्रेष्ठ ज्ञान है, यदि वो जानना है तो नम्रता लानी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, छोटे से बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा पूछता है आकाश नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है, कितनी उत्सुकता है, ऐसे प्रश्न बड़े नहीं पूछते। टमाटर लाल क्यों है, ऐसे प्रश्न पूछता है, पत्तियां हरी क्यों है, उत्साह से उत्कंठा से भरा हुआ है उसका चित्त। वैसे छोटा सा बच्चा बन जाना और पूछना, ये लोग कौन है, ये संस्था क्या है, ये लोग करते क्या है, ये ज्ञान क्या है और किस युग की स्थापना हो रही है, वो युग कौन सा है जो आने वाला है, क्या ऐसा भी कोई युग होगा या ये इनकी केवल कल्पनाएं मात्र है, ऐसा कोई स्वर्ग है या आएगा, कहां है वो स्वर्ग। सबसे पहली बात, ये ज्ञान जो करेगा अवेकन द सोल, यदि ये सत्य ज्ञान है तो आत्मा को जगा देगा। 26 बातों में सबसे पहली बात, यदि ये ज्ञान सत्य है तो आत्मा को क्या कर देगा, जगा देगा। आत्मा जन्म जन्म से सोई है, विकारों में, वासनाओं में, व्यर्थ में, निगेटिव में। क्या चलते हैं विचार मनुष्य के मन में सुबह से लेकर रात तक, व्यर्थ। आत्मा जैसे कि सोई हुई है, उसे खबर ही नहीं क्या हो रहा है, और ऐसी गहरी नींद है। क्रिश्चियनिटी में इसको कहते हैं द डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो भगवान जब धरा पर आता है और वो अब आ चुका है और वो कहता है कि ये मैं ज्ञान देता हूं और मेरा नाम शिव है और मैं तुम सबका बाप हूं, तुम सबका पिता हूं, आई एम द फादर ऑफ ऑल द सोल्स। और जो जो मैं शब्द कह रहा हूं वही सत्य ज्ञान है, ऐसी अथॉरिटी और किसी में भी नहीं है। कई लोग पूछते हैं ये ज्ञान आपको किसने सुनाया, कैसे सुनाया, स्वयं भगवान ने सुनाया। इसका क्या प्रूफ है, प्रूफ है जीवन, प्रूफ क्या है, जीवन। कितने सारे लोग जो इतने व्यसनी थे, एक धक से ज्ञान पाते ही सारे व्यसनों को छोड़ दिया। उधर पुनर्व्यसन केंद्र निर्माण की है सरकार ने, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, यहां ऐसे कैसे हो गया। यहां पर कोई भी ऐसी कोई व्यक्ति देखा जो कि सिगरेट बीड़ी तंबाकू कुछ करता है, कोई व्यसन, कोई भी नहीं है। करते थे शायद, शायद जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ समाप्त हुआ। इसी को तो ज्ञान कहा है, यह ज्ञान भगवान का है, इसी का प्रूफ है संपूर्ण पवित्र जीवन, और कोई इसका प्रूफ नहीं। यही सर्वोत्तम सर्वोच्च हाईएस्ट प्रूफ है दैट दिस नॉलेज इज बीन गिवन बाय गॉड एंड नन अदर देन गॉड। द फर्स्ट थिंग अवेकन्स द सोल, आत्मा को जगा देगा, ये फिर से याद दिलाए देगा तुम कौन हो। उपनिषद का ऋषि चट्टान पर खड़ा होकर चिल्लाता है श्रृण्वन्ते विश्वे, हे विश्व की आत्माओं सुनो, अमृतस्य पुत्राः आये धामिनि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम्। हे आत्मा सुन, ये आर चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टैलिटी, तुम सब ईश्वरीय संतान हो। और उसका अनुभव यहां पर है, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। और वो हम है, नच भाति भूत संघम, ये शरीर मैं नहीं तुम आत्मा हो। यह ज्ञान, यह ज्ञान तो सदियों से लोगों के पास है, पर जो ज्ञान भगवान देता है वो सीधा दिल को चीर देता है और आत्मा अनुभव कर लेती है कि ये विकार मेरा स्वभाव नहीं, ये एडिक्शंस मेरा स्वभाव नहीं है, ये जो संसार में सिनेमा टीवी मोबाइल इंटरनेट में जो कुछ विकार और वासनाएं दिखा रहे हैं, ये मेरा स्वभाव है ही नहीं, मेरा स्वभाव संपूर्ण पवित्र है, संपूर्ण निर्विकारिता मेरा स्वभाव है। ये ज्ञान जिस फोर्स से भगवान देता है वही प्रमाण है कि ये भगवान उवाच है। Thus speak the Lord। तो सत्य गीता ज्ञान अर्थात सबसे पहली बात अवेकनिंग ऑफ द सोल, दूसरी ब्यूटिफाई द सोल, आत्मा को सुंदर बना देता है। आत्मा पतित बन गई है, मलिन बन गई है, विकारी बन गई है, काली बन गई है। हम अपने आप को चेक करें, भक्ति मार्ग में हमने सुना था कि ये देवताएं हैं और इनकी हम पूजा करते थे, यहां पर भगवान आकर एक ऐसी बात सुना दी भगवान ने जो आज तक कभी नहीं सुनी थी, और वो ये थी कि मंदिरों में जिन देवताओं की पूजा होती है वो तुम हो। ये बात किसी भी शास्त्र में लिखी नहीं गई है, ये सब तुम ही हो। इसलिए ज्ञान इतना अद्भुत है। और छोटी छोटी बच्चियां जो अभी दादियां बन गई है, उन्होंने तुरंत वह ग्रहण कर लिया उस समय सिंध हैदराबाद में। इसलिए यही ज्ञान सत्य है। और इस ज्ञान की, गीता ज्ञान की, ये ए से लेकर जेड तक की एक श्रृंखला है जो आत्मा के साथ ये ज्ञान कर देता है। पहला बताया अवेकन्स द सोल, दूसरा बताया इट ब्यूटिफाइज द सोल, आत्मा को सुंदर बना देता है, आत्मा मैली हो गई है। तीसरा इट कंफर्ट्स द सोल, सी आत्मा को सुकून देता है, आत्मा इतनी थक गई है भटक भटक के, गुरुओं की शरण जा जाकर, तीर्थ यात्राएं कर कर कर, भक्ति के गीत गा गा कर, मालाएं फेरते फेरते, आज इसकी पूजा कल उसकी पूजा, कल यहां जाऊं कल आज इस संस्था में कल उस संस्था में, आज इस धर्म गुरु के पास उस धर्म गुरु के पास, जन्म जन्म आत्मा भटकती रही। अब भगवान आया है और वो कहता है अब मैं जो सुनता हूं वो सुनो और कंपेयर करो, ये मेरा ज्ञान और ये गीता बाइबल उपनिषद सारे वेद सारे शास्त्र एक तरफ, और मैं जो सुनाता हूं वो एक तरफ, कंपेयर एंड जज योरसेल्फ। भगवान कभी नहीं कहता है भक्ति छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कुछ नहीं। इस ज्ञान को समझो, पवित्रता परिणाम होगी, प्रयत्न नहीं। इस ज्ञान को धारण कर लो, ब्रह्मचर्य परिणाम होगा, प्रयत्न नहीं। डी Disciplines the soul, आत्मा में अनुशासन भर देगा। वर्तमान समय जो आत्मा है भटक गई है, उसमें कोई अनुशासन नहीं है, कभी भी उठना, कुछ भी खाना, जो मर्जी हो वो करना। क्या ऐसा जीवन सुखी जीवन हो सकता है? सुखी जीवन तो वो है जिसमें अनुशासन है। तो ये गीता ज्ञान ऐसा है जो भगवान इस समय संगम युग पर आकर ब्रह्मा तन में आकर सुना रहा है। इसी ज्ञान से आत्मा में ऐसा अनुशासन आएगा। आज आपने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पर सुनी? आज सुनी ना, या कल सुनी थी? आज 90 साल का वो व्यक्ति, 90 साल की उम्र में कोई चश्मा नहीं, 90 साल की उम्र में वो व्यक्ति बैठता था वो बाबा, तो पीछे कोई सपोर्ट नहीं। 90 साल की उम्र में पहाड़ियां चढ़ जाता था, 90 साल की उम्र में सबकी पालना, बैडमिंटन से लेकर सारे खेल खेलता था। अगर ऐसा परिणाम है एट द एज ऑफ 90, अनुमान लगाया जा सकता है इस व्यक्ति का जीवन कितना संयम और अनुशासन से बीता होगा। हम देखते हैं हॉस्पिटल में 70 साल का कोई हो जाता है तो बेड पर बेड रिडन हो जाता है, निढाल हो जाता है। यहां तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की शुरुआत ही 60 वर्ष की उम्र से है, 60 साल की उम्र में जीवन की यात्रा चालू की, अध्यात्म की। अनुशासन, ये ज्ञान ही ऐसा है कि हर आत्मा में अनुशासन भरता है। हमने देखा यहां पर जितने लोग ज्ञान में आने से पहले 8 बजे उठने वाले थे, अभी सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। ये क्या प्रभाव है, ये किसने कर दिया, ये क्या जादू हो गया उनके जीवन में। प्रातः स्मराम हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम। वो परमहंस की जो गति है कहां से आ गई इन आत्माओं में, कहां से ये अद्भुत बल भर गया, कहां से आत्मा ने पवित्रता को धारण कर लिया। क्या कोई मनुष्य ये कर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। ई इट मेक्स द सोल एनर्जेटिक, आत्मा में ऊर्जा भर देता है ये ज्ञान। भगवान का ज्ञान ही ऐसा है, वो स्वयं ऊर्जा का पुंज है, समुद्र है, सागर है, सिंधु है। और जो वो धरा पर आता है और उसके ज्ञान को जो सुनता है वो स्वतः ही एनर्जेटिक हो जाता है, वो तमो प्रधानता से रजो और रजो से सतो में पहुंच जाता है। वर्तमान समय संसार रजो और तमो में है, डल स्टेज ऑफ इनर्शिया। एफ फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव। आत्मा में बहुत सूक्ष्म घाव है गहरे। हमारे साथ इतनी सारी आत्माओं के संपर्क रहे, किसी ने हमें दुख दिया, दर्द दिया, जो कुछ भी किया, हम में इतनी पावर आ जाती है कि हम वो पुराना अतीत को विसार सकते हैं और हम उस आत्मा को, उस व्यक्ति को माफ करने की शक्ति हम में आ जाती है। इस ज्ञान में इतनी पावर है। नहीं तो हम देखो जीवन में इतनी सारे लोग हैं, सभी के अंदर सूक्ष्म बदले का भाव है। हर एक के साथ कुछ ऐसी बात हुई है, किसी ने उसका दिल दुखाया है, किसी ने उसके साथ कुछ किया है। पर जैसे ही ये ज्ञान में आता है, कोई इस ज्ञान को धारण करता है, समझता है कि ये भगवान का दिया हुआ गीता ज्ञान है, उसमें ऐसा बल भर जाता है कि ही इज एबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट द पास्ट। बीत गई सो बीत गई, फुल स्टॉप। अब उसका कोई चिंतन नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब आगे क्या करना है ये सोचना है। जीवन बहुत कठोर था, दर्दनाक था, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, ट्रॉमेटिक लाइफ थी, जो भी था, फुल स्टॉप। एक माता ज्ञान में आई थी 1950s में, माउंट आबू में, जब सिंध हैदराबाद से यज्ञ आया, वो माता बाबा के पास आई, ब्रह्मा बाबा के पास, और कही मेरे से एक ऐसा पाप हो गया, मैं क्या करूं बाबा। बाबा ने कहा क्या हुआ, पूछ बोलो। उसने कहा जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था पार्टीशन के समय, मेरे घर को आग लगा दी गई थी और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे, अभी अभी जन्म लिए हुए, और आग पूरे घर में फैल गई थी और मैं भी जलने वाली थी, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को नीचे रखा, उनके ऊपर मैं खड़ी हो गई और कूद कर बाहर आ गई, मैंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। बाबा मैं क्या करूं, क्या इसको बदला जा सकता है। स्वयं को बचाने के लिए मैं अपने दोनों बच्चों के ऊपर खड़ी होकर आ गई। बाबा ने कहा बच्ची वो ना होता तो ये भी ना होता, तुम ज्ञान में भी नहीं आती, जो हो गया वो हो गया। उसी के बाद वो ज्ञान में आई। अब वो गिल्ट फीलिंग नहीं, अब वो अपराध भाव नहीं, अब वो गिल्ट कॉन्शियस नहीं कि मेरे से ये क्या हो गया। जीवन में जो हुआ वो हुआ, जो बीत गई सो बीत गई, फुल स्टॉप नाउ। अब उसका चिंतन करके वो बदलने वाला नहीं है, जो हो गया वो हो गया। अब सोचो जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो भी है फॉरगेट इट। अब नया जीवन है, आज से नया जीवन है। बहुत पाप भरा जीवन रहा है, सूक्ष्म पाप किए हैं, काम विकार के द्वारा पाप हुए हैं, क्या करें, चाहते नहीं थे पर हुए, युवा अवस्था ही ऐसी थी उत्तेजना वाली। उसके बाद है जी ग्रेटिट्यूड। ये ज्ञान ऐसा है कि आत्मा को धन्यवाद से भर देता है, सबको धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद, मेरे घर पति को, पत्नी को, बच्चों को, समाज को, सबको धन्यवाद। ये धन्यवाद ऐसा भाव है कि जब हमारे मन में धन्यवाद का भाव रहता है हम आनंद से भर जाते हैं। तो एक मिनट सभी एकाग्र होकर बैठेंगे, रेड लाइट, और हम उन सबको धन्यवाद करेंगे जो हमारे जीवन में आए। मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान, चेतना की वह तरंग, मैं हूं। इस वायुमंडल में आकर, इस परमात्म परिसर में आकर, मैं आत्मा धन्य हो गई हूं। बाबा, सर्वात्माओं के हे पिता, जिसे भगवान प्रभु कहता है संसार, आज वो मेरा पिता है ये मुझे पता चला। तेरा लाख लाख धन्यवाद। हृदय धन्यवाद के भाव से भर गया है। मेरे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ, मैं उससे खुश हूं, संतुष्ट हूं। वर्तमान समय जो व्यक्ति मेरे साथ रहते हैं उन सब का धन्यवाद। मन शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। हमें यहां लाने वाली वो सभी बहनों को धन्यवाद। यहां आकर इन सभी आत्माओं को धन्यवाद जिन्होंने हमारी सेवा की। जीवन ने नई करवट ली है, भाग्य ने द्वार पर दस्तक दी है। चहु ओर से पुकार आ रही है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बाबा, तेरा दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सही समय पर तू मुझे यहां ले आया। तेरा इस कदर आना, ऐसे श्रेष्ठ गीता ज्ञान का परिचय करवा देना, शायद वो सतयुग पता नहीं कब आए, पर मेरा हृदय सतयुग जरूर बन के रहेगा। वो स्वर्णिम युग मेरे ही हृदय में जन्म ले चुका है। राम शांति। उसके बाद है एच हिम्मत। छोटी छोटी कन्याएं थी, छोटी छोटी माता बच्चियां थी, उनमें ऐसी हिम्मत आ गई थी उस समय, और आज भी हम वर्तमान में देखते हैं इस ज्ञान को जिसने भी पाया, साधारण थे परंतु ऐसी हिम्मत आ गई, ऐसी पावर उनमें भर गई कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ये काम हम कर सकेंगे। बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिखा दिए। हिम्मत जो ज्ञान दे वो गीता ज्ञान है। और जैसे कहा वो सतयुग आएगा तब आएगा, परंतु हृदय में सतयुग अब आ जाए। इस गीता ज्ञान से जो सतयुग की स्थापना होगी वो सतयुग पहले हृदय में होगा, फिर वहां होगा। हृदय में जो कलयुग है, हृदय में जो पापाचार है, हृदय में जो भ्रष्टाचार है, वो नष्ट हो जाए। संभवानी युगे युगे, अब हो जाए वो। उसके बाद आए इनकलकेट वर्च्यूज, दिव्य गुण को धारण कराने वाला ये ज्ञान है। ये वो ज्ञान है जिसमें स्वतः ही सारे दिव्य गुण आ जाते। हमने देखा जो व्यक्ति बहुत क्रोधी थे अपने आप शांत हो गए, जिनका स्वभाव जो ऐसे बॉसेस हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट थे संसार में जो डांटते रहते थे, अपने आप नम्रता आ गई। सारे दिव्य गुणों को धारण कराने वाला ये ज्ञान है। उसके बाद है जे अर्थात जर्नी विद इन। अब तक मनुष्य बाहर की यात्रा करते रहा है, ये वो ज्ञान है जो आपको क्या करेगा, अंदर अपने अंतर जगत में ले जाएगा। उसके बाद में के कीपिंग स्टेबल, कितनी भी परिस्थितियां हो विकराल, कठिन से कठिन, इस ज्ञान में वो बल है, वो पावर है, स्टेबल रखेगा। गीता कहती है स्थित प्रज्ञ योगी, अलिप्त रखेगा कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी आ जाए। भगवान अपने विषय में कहता है मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं देशवस्थितः। मैं इस संसार में ऐसा हूं जैसे हूं ही नहीं, अनासक्त हूं। वो भगवान सी स्थिति हमारी हो जाएगी, निर्लिप्त अलिप्त डिटैच्ड साक्षी। उसके बाद एल लव योरसेल्फ एंड मोटिवेट एंड लव अदर्स। ये ज्ञान में वो पावर है। महात्मा बुद्ध ने एक जगह लिखा है यदि आप सबको प्यार करते हो अपने आप को छोड़कर तो तुम्हारा प्रेम अपूर्ण है। क्या मैं स्वयं को प्रेम करता हूं? ये वो ज्ञान है जो हमें स्वयं से भी और विश्व से भी प्रेम करना सिखाता है, लव। उसके बाद एम मोटिवेट योरसेल्फ, ये वो ज्ञान है जो हमें मोटिवेट करता है और आगे और आगे और आगे और आगे ले जाता है। वहीं नहीं रुक जाओ जहां तुम हो, मंजिल बहुत आगे है, ये तो पड़ाव है, मील के पत्थर मात्र है, जहां पहुंचना है वो बहुत आगे है। हमें उत्साहित करता है, प्रेरणा देता है, नहीं तो जीवन में जो जीवन निर्लक्ष है। पूछो संसार के लोगों से कहां जा रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं कहां जा रहे, बस जा रहे भाग रहे बस। ये वो ज्ञान है। उसके बाद एन न्यूट्रलाइज ऑल कर्मिक अकाउंट्स, हमारे जितने हिसाब किताब है जन्म जन्म के दूसरों के साथ, कितनों को हमने पता नहीं दुख दिया है, कितनों से कैसे कैसे हिसाब जोड़ के रखे हैं, इस ज्ञान में वो बल है कि सारा हिसाब किताब न्यूट्रलाइज कर देता है। पर एक बात आप सबको करनी होगी, यहां से जाने के बाद इस ज्ञान को समझने की कोशिश करना है, और ज्ञान को समझने का मार्ग है भगवान की मुरली। भगवान की मुरली, और मुरली क्या है, मुरली क्या है, भगवान के महावाक्य मुरली है। जो गीता ज्ञान है वही मुरली है। भागवत में दिखाया है गोपिकाएं, भगवान की गोपिकाएं, कृष्ण की गोपिकाएं दिखाए, कृष्ण से गीत गाती है, सुना होगा सबने गोपिका गीतम तव कथामृतम, गोपिकाएं कहती है, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोपाल, तेरी जो मुरली है, तेरी जो वाणी है, तेरे जो वाक्य है, तेरे जो शब्द है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप रहा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबिरडितम कल्मषापहम, वो तेरा जो गीत है, तेरी जो वाणी है, तेरी जो मुरली है, जिसका कवियों ने गायन किया है, श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल है, श्रवण मंगलम, श्रीमदाददम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। तो यहां से जाने के बाद सभी मुरली सुनेंगे, हाथ खड़ा करो जो जो सुनेंगे। और कहां सुनाई जाती है मुरली? मधुबन में। और मधुबन कौन सा है? सेवा केंद्र है वो। मुरली कोई साधारण शब्द नहीं है, किसी मनुष्य के शब्द नहीं है, उसमें जो पावर है, उसमें जो अथॉरिटी, उसमें जो मैं कहता है, वो भगवान उवाच है। उसके बाद ओ अर्थात ऑप्टिमिज्म, इस ज्ञान में वो पावर है कि पॉजिटिविटी भर देता है अंदर, नहीं तो जीवन नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। हर चीज के लिए निगेटिव, हर चीज के लिए, पास्ट के लिए निगेटिव, फ्यूचर के लिए निगेटिव, वर्तमान के लिए निगेटिव, लोगों के लिए निगेटिव, ऑफिस के लिए निगेटिव, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, मित्रों के लिए, सबके प्रति निगेटिव विचार चालू रहते हैं। इस ज्ञान में वो बल है, ऑप्टिमिज्म को लाएगा। उसके बाद पी अर्थात प्यूरिटी। प्यूरिटी किस किस को अच्छी लगती है? हाथ खड़ा करेंगे। बहुत पवित्र जीवन हो, मंदिर में जब जाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? किसी भी मंदिर में चले जाओ, कितनी पवित्रता है वहां पर। क्या वहां कोई गंदे विचार आते हैं किसी को? नहीं आते। यदि हमारा जीवन ही मंदिर बन जाए तो, यदि हमारा घर ही मंदिर बन जाए तो, इस ज्ञान में वो बल है, शक्ति है, पावर है कि प्यूरिफाई कर देगा। उसके बाद है क्यू, क्विट बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, एडिक्शंस, ये जितनी आदतें हैं बुरी, यदि हमारे जीवन में चल रही है, इस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि आदतों से मुक्त हो जाएंगे, ये बुरी आदतें, नई आदतें आ जाएगी ज्ञान की। उसके बाद आर, आर अर्थात राजयोग, ये ज्ञान हमें राजयोग की तरफ ले जाएगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। पहला है ज्ञान, ज्ञान से पता चलेगा योग क्या है। और गीता में अर्जुन ने, अर्जुन को कहा है तुम योगी बनो, योगी सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद एस, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, ये ज्ञान मौन का महत्व समझाएगा, क्योंकि जितने महान कार्य संसार में हुए हैं मौन की अवस्था में हुए हैं। गुरुस्त शिष्य व्याख्यानम, मौनस्थ व्याख्यान ऐसा है मौन का कि जैसे गुरु बैठा है और शिष्य बैठे हैं, शिष्यस्तु चिन्न संशय, शिष्य के सारे संशय गुरु का मौन दूर कर रहा है। ये मौन क्या है, साइलेंस क्या है, एकांत क्या है, इसका महत्व हमें ये ज्ञान देगा, और तब पता चलेगा यही सत्य ज्ञान है। उसके बाद में टी अर्थात टायरलेस, आपने यहां देखा होगा सेवाधारी सुबह से लेकर रात तक सेवा करते रहते हैं। यहां किसी को ऐसा सुना बोला मेरी ड्यूटी तो हो गई मैं तो चला? कोई मां ऐसी कहती है 5 बज गए बच्चा बीमार है पर मेरी ड्यूटी पूरी होगी मैं चली टाटा, ऐसा कोई मां कहती है? क्यों नहीं कहती? क्योंकि वो अपना है। और यहां पर जितने आपने लोग देखे होंगे सेवाधारी दिन रात काम करते रहते बिना थके, क्योंकि ये मेरा यज्ञ है, क्योंकि ये मेरी सेवा है, क्योंकि भगवान मेरा है, क्योंकि भगवान को अब मैंने अपना बनाया है। एक मुरली में आया था, भगवान ने कहा था एक समय आएगा सतयुग में धरती और आकाश तुम्हारी मुट्ठी में होगा, क्योंकि इस समय भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। भगवान उवाच, मन मना भव मध्याजी वक्ता माम नमस्कुरु सर्वधर्म परितज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पाप्यो विमोक्ष इष्यामि मासुच। हे अर्जुन, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जा। तो यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा अर्पित कर दिया है। और भगवान भी कहता है, जो मेरी शरण में आएगा, अब योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उनकी देखभाल करूंगा। You understanding oneself and others, खुद को समझना और दूसरों समझना, ये ज्ञान समझाएगा। We victory, विजय दिलाएगा जीवन में, उस जीवन में और इस जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में और लौकिक दोनों जीवन में विजय प्राप्त होगी, क्योंकि ये ज्ञान से एकाग्रता आएगी, लक्ष्य निर्धारित होगा। W watchfulness, जागरण आएगा, अवेकनिंग होगी, माइंडफुलनेस आएगी, हर काम होश में करेंगे, बेहोशी में। अब तक जितने काम करते आए बेहोशी में करते आए, काम किया और फिर पश्चाताप किया, बाद में सोचा नहीं करना चाहिए था, जॉब किया फिर छोड़ दिया, सोचा ये हमारा जॉब ही नहीं था, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे लायक ही नहीं था, जो भी कुछ किया पश्चाताप किया। ये ज्ञान ऐसा है, सोचो ये रास्ता है, यहां पर एक गड्ढा है और कोई चल रहा है, उसमें कब गिरेगा वो? जब बेहोश है। कोई जागृत खुली आंखों वाला व्यक्ति कभी नहीं गिरेगा गड्ढे में। हम गिरे इसका मतलब हम बेहोश थे, अब जागना है। जागो, अब भगवान आया है, यहां आना, ये टर्निंग प्वाइंट हो जाए जीवन का। अब तक का जीवन दूसरा, अब यहां से जाने वाला जीवन दूसरा होगा। सबका होगा। एक्स एक्स रे, ये ज्ञान कहता है दो बार एक्सरे निकालना है स्वयं का, सुबह और शाम। एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग, खुद को देखना। वो दूसरों को बहुत देख लिया, दूसरों की गलतियां बहुत निकाल ली, अब अपने को देखो कि मैं कहां हूं, मेरा जीवन कहां है। Why? योगा पावर, इस ज्ञान से योग का बल आत्मा में भरेगा। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ से कोई आईएएस जरूर बन सकता है, परंतु ब्राइब न लेने की शक्ति योग बल से आएगी। महाभारत में तीन प्रकार के बल का वर्णन है, बाहुबलम, बुद्धिबलम, योग बलम। तो ये गीता ज्ञान योग का बल भर देगा आत्मा में, ऐसी पावर भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि ऐसा व्यक्ति फिर जो बोलेगा जो करेगा वो कीर्तिमान बन जाएंगे, रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे। लास्ट जेड, जील एंड जेस्ट, अर्थात उमंग और उत्साह। अभी देखो किसी भी जीवन को उत्साह है ही नहीं, जीवन में मरे पड़े हैं जैसे, जी क्या रहे हैं, मरे हुए हैं। हम रोज ओपीडी में देखते हैं इतने पेशेंट्स आते हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, दर्द में है, कितने लोग आते हैं, यहां तक कि तथाकथित धार्मिक लोग भी। तो ऐसी ये 26 बातें हैं जो ये ज्ञान कर दिया, ये ज्ञान कर देता है, और इस ज्ञान ने ऑलरेडी कर दिया है। अब अगर आप खुली आंखों से देखोगे तो इस कैंपस में, तो ऐसा जो गीता ज्ञान है वही स्वर्णिम युग को लाएगा। एक तो स्वर्णिम वो युग है जो आने वाला है, सतयुग, जिसके विषय में हर धर्म ने कुछ ना कुछ कहा है, द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। किसी धर्म ने उसको पैराडाइज कहा, किसी ने हेवन कहा, किसी ने टेप जेपी कहा, किसी ने यूटोपिया कहा, किसी ने स्वर्ग, किसी ने बहिष्ट, किसी ने अल्लाह का बगीचा, ऐसे हजारों नाम है उस घर के लिए, उस नवयुग के लिए जो कि आने वाला है। तो जो कहानी में शुरू में बताया था, अब तक का जो जीवन था, सोचो अब उसको हम नष्ट करके एक नया भवन बनाएंगे नवयुग का, जिसमें प्यूरिटी होगी, पवित्रता होगी, अनुशासन होगा, ईश्वरीय ज्ञान होगा, धारणाएं होगी, श्रीमत होगी, परमात्मा प्रेम होगा, सेवा के लिए जीवन होगा, स्वयं के लिए नहीं होगा वो जीवन, दूसरों के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये जो ज्ञान है यही वास्तविक सत्य ज्ञान है। सभी एकाग्र बैठ जाएंगे, जो गीत बजेगा एकांत में मौन में सभी सुनेंगे और स्वरूप बनने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति।